रुद्राक्ष नव्यम की म्यूजिक एकेडमी आया हुआ था। उसे पता चला था कि नव्यम को पे पर करनी थी, लेकिन विक्रांत खुराना से सारे रिश्ते टूट जाने के बाद विक्रांत ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। ऐसे में रुद्राक्ष ने आगे चलकर नव्यम की मदद की। नव्यम एक खुद्दार टाइप का इंसान था। उसका फायदा उठाते हुए रुद्राक्ष ने उससे यही मांगा कि वो खुराना फैमिली की कभी मदद ना करे। नव्यम वैसे भी विक्रांत खुराना से नाराज था, तो उसे वादा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। रुद्राक्ष एक एक करके विक्रांत के सारे सहारे छीन लेना चाहता था। नव्यम के बाद उसका अगला टारगेट कौन होने वाला था, ये वही जानता था। नव्यम से मिलने के बाद रुद्राक्ष घर पर पहुंचा। वहां मोक्ष अकेला ही रुद्री को संभाल रहा था। दीपिका भी उसके साथ थी। मोक्ष आते ही रुद्री के कमरे में गया और बोला, मैं नव्यम से मिलकर आ रहा हूँ। उसने दादी को किसी से बात करते हुए सुना था। वो ईशानी को बॉर्डर पार भेजने की बात कह रहे थे। जैसे ही रुद्राक्ष ने बताया, हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अचानक मोक्ष रुद्राक्ष से बोला, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्यों, तुम्हें हम सब के सामने बात करने में शर्म आ रही है? हम सब यहाँ ईशानी को ढूंढ रहे हैं और तुम्हें ऐसे में बातें छुपानी है मोक्ष? रुद्री ने गुस्से में कहा। वैसे भी वो ईशानी के जाने के बाद से काफी परेशान थी। मोक्ष उनके सामने सारी बातें नहीं कर सकता था। उसने दीपिका की तरफ देखा। दीपिका उसका इशारा समझते हुए बोली, जरूरी नहीं ना रुद्री जी, इनकी सारी बातें ईशानी से जुड़ी हुई हों। कुछ बातें बच्चों को अकेले करने देते हैं। वैसे भी आपकी दवाइयां लेकर आराम करने का वक्त हो गया है। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है और आप हैं कि पूरे दिन से आराम ही नहीं की हैं। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मोक्ष बोला। अगर आप इसी तरह अपनी हेल्थ को इग्नोर करती रहीं तो मैं आपको वापस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा और आपको ईशानी के बारे में कोई अपडेट भी नहीं दूंगा। मोक्ष की धमकी काम आई। रुद्री ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, कर लेती हूँ आराम, लेकिन तुम लोग मुझे ईशानी से जुड़ी हुई कोई बात नहीं छुपाओगे। मेरी बच्ची तकलीफ में है, जब तक वो नहीं आ जाती मुझे आराम नहीं आने वाला। बोलते हुए रुद्री की आंखें नम होने लगी। मोक्ष ने रुद्री को दवाइयाँ दी और फिर से सुला दिया था। बाहर जाने से पहले मोक्ष ने दीपिका से कहा, थैंक यू सो मच आंटी, प्लीज़ मॉम का ध्यान रखिएगा और फिक्र मत कीजिए, हम ईशानी को ढूंढ लेंगे। दीपिका ने उसकी बात पर पलके झपकाकर हामी भरी। मोक्ष रुद्राक्ष को बाहर लिविंग रूम में ले आया था। बाहर आते ही मोक्ष बोला, याद है मैंने आपको बताया था कि हम किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं, वो हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी मदद लेने की। हम नहीं जानते कि ईशानी कहाँ किस हालत में है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक कदम उसके लिए मुसीबत क्रिएट कर दे, रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा। मोक्ष पहली बार उसकी बात से सहमत नहीं था। वो चिढ़ते हुए बोला, हमारी हेल्प भेजने से ईशानी प्रॉब्लम में कैसे आ सकती है? वो बेचारी वहाँ इस उम्मीद में बैठी होगी कि कोई उसकी मदद करेगा और आप हैं कि कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। आपको ईशानी को ढूंढना भी है या फिर अपना पूरा टाइम खुराना फैमिली को बर्बाद करने में लगाना है? रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो मोक्ष को समझाते हुए शांति से बोला, देखो अगर ईशानी इंडिया में है तो वो कैसे तैसे करके हमसे कांटेक्ट कर लेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फंसने के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग हुई है। अब तक ईशानी ने कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब नव्यम सही कह रहा था, वो इस देश में नहीं है। सोचो अगर वो पाकिस्तान और तालिबान जैसी जगह पर चली गई और हमने उसको ढूंढने के लिए कुछ भी हरकत की तो ईशानी के लिए मुसीबत हो सकती है। वो छुपी हुई होगी और इस तरह लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। आपकी बात भी सही है रुद्राक्ष, लेकिन हम ईशानी को ढूंढेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? मोक्ष ने हैरानी से कहा। अभी तो मेरा पूरा प्लान जानते नहीं हो और ना ही मैं बता सकता हूँ। फिलहाल तो तुम मेरे लिए इतना ही कर सकते हो कि मॉम और दीपिका आंटी का ध्यान रखो, बाकी मैं खुद देख लूंगा, रुद्राक्ष ने जवाब दिया और वहां से चला गया। उसकी प्लानिंग के बारे में वो ही जानता था। मोक्ष के जाते ही मोक्ष ने अपने मन में कहा, अजीब मुसीबत है, ना तो मदद लेना चाहते हैं और ना ही कुछ बता रहे हैं। आई होप ईशानी ठीक हो, मुझे उसके बहुत परवाह हो रही है। मोक्ष ईशानी के लिए परेशान था तो वहीं जैन, आदम और साद को गए हुए सुबह से शाम हो चुकी थी, पर वो अभी तक नहीं लौटे थे। ईशानी पूरे दिन घर में अकेली बंद थी, तो उसने घर को अच्छे से साफ करके उसकी रंगत ही बदल दी थी। रात के लगभग 9 बजे के करीब जैन, आदम और साद घर पहुंचे। उन्होंने धीरे से खुद ही दरवाजा खोल लिया था। जैन ने किसी के लिए भी दरवाजा खोलने से मना किया था। ऐसे में दरवाजे की आवाज सुनकर ईशानी चौकन्नी हो गई। ईशानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहीं कोई चोर तो नहीं घुसाया है या कोई और आर्मी ऑफिसर? हे भगवान, अजीब मुसीबत है, अब इससे प्रॉब्लम से कैसे निकलूं? ईशानी को अपने हथियार के तौर पर कुछ नहीं दिखा तो उसने झाड़ू उठा लिया था। जैन और आदम पीछे पीछे आ रहे थे जबकि साद उनसे आगे था। मिशन पर होने की वजह से उन्होंने अपने चेहरे पर काला रंग लगा रखा था। ईशानी ने उसे चोर समझा और उसे झाड़ू से बुरी तरह पीटने लगी। वो उसे मारते हुए बोली, कौन हो तुम, बताओ किस मकसद से यहाँ पर घुस कर आए हो? देखो तुम हम इंडिया वालों को कमजोर मत समझना, हमें अपने दुश्मनों को टक्कर देना अच्छे से आता है। अरे बॉर्डर पर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ सबको मार पिटाई अच्छे से आती है, औरतें तो मार कुटाई में और भी अच्छी होती हैं, साथ चिल्लाते हुए बोला। अरे अरे मोहतरमा, आप क्या कर रही हैं? एक तो इतने थके हारे आए हैं, ऊपर से आप आते ही हमारी सेवा पानी में लग गई,
तुम्हारी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, ईशानी ने रुकते हुए कहा। फिर उसने गौर से साथ का चेहरा देखा तो वो झाड़ू पटकते हुए बोली, अरे पहले बता देते तुमसे, खामखा मेरी एनर्जी वेस्ट कर दी। आपने बताने का मौका ही कब दिया, बस पहले ही मेरी सुताई करनी शुरू कर दी, साथ खुद के कपड़े सही करते हुए बोला। आदम और जैन ने उनकी बातें सुनी तो वो सब समझ गए और जोर जोर से हंस रहे थे। ईशानी मुंह बनाते हुए खड़ी थी। साथ की हालत देखकर अचानक उसे भी हंसी आने लगी। वो बोली, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, देखो तुम्हारा चेहरा कितना सूज गया है। हाँ तो सुजाया भी तो आपने ही है, ऊपर से आप हंस रहे हैं, कितनी बेदर्द हैं आप, साथ ने मुंह बनाकर कहा। वो सब आपस में मस्ती कर रहे थे, उतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और एक तेज सख्त आवाज आई, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। उस आवाज के साथ ही वो तीनों अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए। साथ धीरे से बोला, मर गए, अब तो खुदा खुद जमीन पर उतर आए तब भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। एक नए शख्स को अपने घर पर देखकर ईशानी घबरा गई थी, ऊपर से उसके तेवर भी काफी सख्त थे। जैन ने उसे सबसे छुपने के लिए कहा था लेकिन वो अनजाने में उसकी नजर में आ गई थी। कौन है ये नया शख्स जो कैप्टन जैन के घर पर आया है, लगता है ईशानी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आज का पार्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से 15 तारीख से पहले कहानी को खत्म भी करना है। लगता है अब तो एक साथ कहानी खत्म करके दिन में 2 से 3 पार्ट देने होंगे तभी एडजस्ट होगा, वरना अगर कॉम्पिटिशन की डेट तक खत्म नहीं हुई तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।